ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया की ऐतिहासिक और अपनी पहली आधिकारिक यात्रा संपन्न कर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। यह यात्रा भारत क्रोएशिया संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगाढ़ता और भावी रणनीतिक सहयोगों के लिए बुनियादी तैयार करने के अवसर साबित हुई। मध्य और दक्षिण पूर्व यूरोपीय देश की दिन भर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच ने बांस्की वोरी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की व्यापक वार्ता की। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी किया। इसमें वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। श्री मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि यूरोप हो या एशिया, युद्ध के मैदान में समाधान नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने के लिए एकमात्र व्यवहारिक मार्ग है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा करते हुए इसे मानवता का दुश्मन बताया।
हम सहमत है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने, लचीलेपन और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर सहमति व्यक्त की।
हमने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और विश्वसनीय सप्लाई चेन तैयार करने के लिए कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। हम फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे कई महत्वपूर्ण विषयों में सहयोग को बढ़ावा देंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ और डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। भारत और क्रोएशिया ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो क्रोएशिया में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने क्रोएशिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता की भी सराहना की। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में क्रोएशिया के प्रधानमंत्री जागरेब में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया गया। श्री मोदी ने गर्मजोशी भरे आतिथ्य सत्कार के लिए क्रोएशिया की सरकार और लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवार को न्यूयॉर्क में ईरान के बारे में एक आपातकालीन सत्र आयोजित करेगी। ईरान के अनुरोध पर परिषद ने यह बैठक बुलाई है। चीन, पाकिस्तान और रूस ने भी इसका समर्थन किया। ईरान ने सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी और संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों की प्रमुख रोजमेरी डिकार्लो से ब्रीफिंग का आह्वान किया। भारत ने ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण बिगड़ते हालात को देखते हुए ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। अभियान के पहले चरण में तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला और उन्हें सुरक्षित आर्मेनिया भेजने में मदद की। ये छात्र सड़क मार्ग से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये छात्र आज तड़के एक विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचेंगे। सरकार ने इस वर्ष 15 अगस्त से 3,000 रुपए की कीमत वाले फास्टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी दी। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने कल मलेशिया के कुचिंग में जापान के टोमोटाका एंडो को 3-0 से हराया। पिछले दौर में चीन के ली हाइजेन को हराने के बाद दुनिया के 45वें नंबर के खिलाड़ी अब टूर्नामेंट के एकमात्र भारतीय रह गए हैं। सूरज चंद, आकांक्षा सालुंखे और शमीना रियाज पहले दौर में ही बाहर हो गए हैं। अनाहत सिंह इस टूर्नामेंट में नहीं खेली, वे अगले सप्ताह स्क्वैश की युगल प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।